ये आयतों को साथ लेकर इसके अंदर से अपने लिए अमल की चीज़ों को लेके चलते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, आयत नंबर 97। قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين। आप इन यहूद से कह दीजिए, कौन से यहूद से लिख लीजिए, नबी सल्लम को फरमाया जा रहा है, मदीना के यहूद को कह दीजिए कि जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, इसे मालूम होना चाहिए कि जिब्राइल ही ने तो इस कुरान को अल्लाह के हुक्म से आपके दिल पर उतारा है, जो अपने से पहली आसमानी कुतुब की तस्दीक करता है और मोमिनों के लिए हिदायत और बशारत है। अगर जिब्राइल से इनकी दुश्मनी का सबब यही है तो कह दीजिए कि मन काना अदुवन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल, कि जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाईल का दुश्मन है, तो खूब सुन ले कि फ़इन्नल्लाहा अदुवल लिल काफिरीन, अल्लाह ताला तो बेशक फिर काफिरों का दुश्मन है। इन आयात के पीछे एक वाक्या है, जैसा कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि नबी सल्लम जब मदीना में आए तो वहाँ यहूद पहले से मौजूद थे जो नबी सल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। जब एक ख़ास मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी, ईमान लाने को कहा, तो कहने लगे अच्छा ठीक है हम सोचेंगे। अब मानना नहीं था ना, तो जो सोच में पड़ता है ना, असल में वो जान छुड़ाता है, वो कभी नहीं आता। दुनिया के काम आप जितना सोच समझ के करेंगे ना, ज़्यादा अच्छे करेंगे, और दीन के काम का सुनकर जो कोई सोच में पड़ गया वो कभी पलट के नहीं आएगा। याद रखिए, दीन का काम सोच वाले नहीं, दिल वाले करते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने इन आयात में यही बात बता दी कि देखो, तुम जिब्राइल का नाम लेकर दीन से रुकते हो, सोच में पड़े तो सोच क्या आई, अगले दिन नबी सल्लम के पास आए, कहने लगे अच्छा लेट्स सी वी विल बी मुस्लिम, जरा चंद बातों का जवाब तो दे दे, कुछ सवाल पूछ ली। मैं तफसीरों में नहीं लेके जा रही आपको, आप पिछले साल वाला सुन के उसकी डिटेल लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन बस कोई भी वाक्या था इस वक्त, तो आपको दिल पे लेना है इसको, ये बताएं ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है मैं आपको इसके जवाब दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा और वही के जरिए अल्लाह के नबी को उन सवालों के जवाब दिलवा दिए जो उस दौर में किसी को नहीं पता था। इस वक्त आगे जाके भी हम इस पर बात करेंगे 15वें पारे में। खैर, उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब आप इमेजिनेशन में लाएं ना ज़रा, आप में से कोई मेरे ही पास आ जाए, आप कह के अच्छा जी नए साथी हैं आपके पास लाए हैं, आप ज़रा ये चंद सवालों के जवाब दे दें तो फिर हम ये कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, तो मेरी अक्लमंदी क्या है कि अगर तुम मुझे सवालों के जवाब आते हैं तो मैं बता दूँ, नहीं आते तो कहूँ मैं पूछ के बता दूंगी, सोच के बता दूंगी, पढ़ के बता दूंगी, कोई भी वजह, अगले दिन वो आए मैं उनके सारे सवालों के जवाब भी दे दूँ। यही स्नैरियो वहां चल रहा था, अल्लाह के नबी ने उनके सब सवालों के जवाब दे दिए। अब क्या करते हैं, अब कैसे झुटलाएं, कहेंगे अच्छा अल्लाह के नबी, अच्छा जी आपने जो ये बताइए कि आपके पास वही कौन लेके आता है, तो आपने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते हैं, अच्छा सॉरी फिर हम मुसलमान नहीं हो सकते, क्यों, जिब्राइल से तो हमारी पुरानी दुश्मनी है। भाई क्या दुश्मनी है, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा। तो तीन मुख्तलिफ उजर जिब्राइल के ऊपर इन लोगों ने घड़े, मुख्तलिफ रिवायात से मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पहली बात, कहते थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम बड़ी सख्त किस्म की शरीयत लेकर आए थे, यानी तौरात के अंदर जितने मुश्किल हुक्म थे वो सारे के सारे उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ऊपर लगा दिए कि इतनी मुश्किल चीज़ें लेके आते थे हम नहीं मानेंगे। दूसरी वजह, पीछे हिस्ट्री याद कर लीजिए, फिरौनियों का जब दौर था, अभी आपके ये लेफ्ट साइड पे थे, सारे मिस्र में थे, तो मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए थे फिरौन की ज़िंदगी में, हम सूरत अल अराफ में जिक्र पढ़ेंगे, सात किस्म के अजाब थे, जराद और सिनीन और दफ़दफ़ा और दिमा, मुख्तलिफ अजाब आते थे। तो कहते जिब्राइल से हम इसलिए खुश नहीं हैं कि ये हम पर बहुत सारे अजाब लेकर आया, हम इसकी बात इसलिए नहीं मानते। और तीसरा इल्ज़ाम क्या है कि ये जी बनी इस्माईल के एक नबी के पास क्यों वही लेके आ गया, बनी इसराइल पे क्यों नहीं लाया। अल्लाह ताला ने कहा कि नबी तो कुछ नहीं कहेंगे, उनमें तो बहुत मुरव्वत है, मेरा नबी जो है वो सारे मामलात अल्लाह पर डालता है, लेकिन तुम जिब्राइल के दुश्मन हो तो सुन लो, मन का नादू वल्ली जिब्रील, जो जिब्राइल का दुश्मन हो, वो नज़्ज़लहु अला कल्बी का, जिब्राइल का क्या कसूर है, या जिब्राइल के हाथ में अथॉरिटी कितनी है, वो तो सिर्फ आपके दिल पर इस कुरान को नाजिल करता है बिज़्निल्लाह। यहाँ लफ्ज़ बिज़्निल्लाह को हाईलाइट कर लें, ये थीम है इस आयत का, कि जिब्राइल लेके आते हैं किताब, इसमें कोई शक नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उसके अंदर ताकत अपनी नहीं है, अल्लाह के हुक्म से आता है। लड़ाई करनी है तो अल्लाह से करो, बात वाज़े, अल्लाह के नबी के दिल पर आत लाता है बिज़्निल्लाह। और जो कुरान आ रहा है, कोई तुम्हारा दुश्मन है या तुम्हारे पास जो पहले से इल्म मौजूद है, क्या वो उसके अगेंस्ट है? नहीं। मुसद्दिक़ अल्ली मा बैना यदैही, यहाँ बैना यदैही के नीचे डाउन एरो लगा के लिखिए तौरात, वो तौरात जो तुम्हारे पास है, ये कुरान उसको वेरीफाई तो कर रहा है। देखिए, कोई बंदा कहता है कि कल बारिश होगी, वेदर चैनल में से आप खबर पढ़ते हैं कि बारिश होगी आज, और वाकई आज बारिश हो जाती है, तो आप क्या कहेंगे? ये समझ ले, क्योंकि ये बड़ी दफातर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मुसद्दिक कलिमा कैसे है, कुरान मुसद्दिक कैसे है पिछली किताबों का। जिस तरह वेदर चैनल की प्रिडिक्शन के जवाब में कोई उम्मीद लगा लेता है कि आज बारिश होगी, और वाकई अगर आज बारिश हो गई, मिसाल दे रही हूँ, तो हम क्या कहेंगे? इस बारिश ने वेदर चैनल को वेरीफाई कर दिया कि उनकी न्यूज़ ठीक थी, बात वाज़े। बिल्कुल इसी तरह रहे तौरात और इंजील जो किताबें थी, उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबरें थीं। जो हालात बाद में पेश हुए यहूद को, वो सब थे, अल्लाह के नबी सल्लम के नाते से जो कुछ हुआ वो सब मौजूद था। तो जब कुरान नाजिल हुआ तो बिल्कुल मनोवन वही चीज़ हो गई ना जिसकी खबर तौरात में दी हुई थी। तो आप कहेंगे कि कुरान इज़ कन्फर्मिंग द तौरात और इंजील, वेरीफाई करे, और यही बात यहाँ कह दी कि तुम्हारे खिलाफ तो कोई दीन नहीं लेके आ गया, वही दीन है ना, उस वो भी तुम भी कल तक कहते थे नमाजें पढ़ो नमाजें पढ़ो। ये बताओ कि जो ये नया शख्स दीन लेकर आया है, क्या तुम्हें ये कहता है कि नमाजें ना पढ़ो, रोजे ना रखो, जिना करो? कोई एक चीज भी इस्लाम में तुम्हें कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई दिख रही है असल क्रिश्चियनिटी और जीजम से? नहीं दिखती। तो फिर तासुब छोड़ दो, और अगर फिर भी नहीं छोड़ते तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये कुरान तो पिछली किताबों को ना सिर्फ ये कि वेरीफाई करता है, बल्कि इसकी खूबी क्या है, वह हुदन गाइडलाइन है। तुम्हारे उलमाए कराम ने तौरात में जो तब्दीलियां कर दी थी, आम लोगों की रेंज से ये तौरात ऊपर चली गई थी, काबिले अमल तो लगता ही नहीं था उनको किताब का वो नुस्खा कि जिसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। तो नतीजा क्या निकला कि इस किताब ने आकर तुम्हें हुदन सिखाई, गाइडलाइन दी, कोई बात नहीं, ये हलाल है, ये हराम है, बीच में हल्की हल्की बातें भी हैं, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं कर सकते तो इससे नीचे पे आ जाओ। कई इस्लाम ने कुरान के जरिए कितने रास्ते दिखाए लोगों को हराम और हलाल के बीच के, लेकिन इनके बुजुर्ग जो थे दीन के नाम पे, उन्होंने बड़ा सख्त दीन दिया हुआ था, तो कुरान क्या बना? हुदन गाइडलाइन। और तौरात इतनी ज्यादा मेस्ड अप हो चुकी थी उस वक्त तक कि लोगों को समझ ही नहीं आता था कि किस पे अमल करें किस पे ना करें। मैं इसको ऐसे सोच रही हूँ कि जैसे आप ये देखिए फ़नी करीब बुक मेरे पास है ना, नई बुक है, कितनी साफ़ सुथरी है। मैं अगर इसमें से आयत पढ़नी चाहूँ, ये देखिए अरबी की आयत पढ़ लूँगी, मैं चाहूँ इसके नीचे उर्दू तर्जमा पढ़ लूँ, मैं चाहूँ तो इंग्लिश पढ़ लूँ, राइट? ये किताब है। अब ये तो है ब्रांड न्यू किताब, आप सोचिए कि तौरात बिल्कुल इस फॉर्म में उतरी, इन लोगों ने क्या किया, इस किताब के ऊपर ही लिखना शुरू कर दिया। अब मिसाल है 6 माह बाद अगर कोई आपकी किताबों को देखे, इतना कुछ आपने इसमें लिख लिया, जब आप इसका लफ्जी तर्जमा सुने वो भी इस पे लिखें, तफसीर भी लिखें, कुछ अमल की बातें कहीं आप इंडेक्स कार्ड लगा दें, तो फिर मैं आपसे कहूँ कि लाए ज़रा दुआ निकालें, तो हो सकता है आपको समझ ही ना आए कि मेरा लिखा किधर है तो इनका किधर है। तो लिखी हुई किताब पर जब लोग खुद से कुछ लिखते हैं ना, तो असल किताब पढ़ी नहीं जाती। ये उन्होंने तौरात के साथ किया। ये क्या थी? बुक थी, इन्होंने इसको एक्सरसाइज बुक बना दिया। एक्सरसाइज और बुक में क्या फ़र्क है? बुक को पढ़ते हैं और उस पर गौर करते हैं, और एक्सरसाइज बुक में खुद लिखते हैं। उन्होंने बुक को वर्कबुक बना दिया। नुकसान क्या हुआ? आम लोगों के लिए किताब काबिले अमल ही ना रही। लोग को तो रात रख के सामने पूछते होंगे उस दौर में भी, क्या करें, समझ नहीं आता, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। फिर इन्होंने किताबें लिखी। आपको पता कि लफ्ज़ तौरात, इसमें इंशाल्लाह जिंदगी रही अगर तो सूरत आले इमरान की बिल्कुल पहली आयत तो मैं बताऊंगी कि तौरात क्या है और इंजील क्या है। और ये कोई अल्लाह की किताब नहीं है, ये इनकी शरहें हैं, इनके उलमा की लिखी हुई किताबें हैं। जैसे आज उम्मत मुस्लिमा में भी मजहब मचा हुआ है, कुरान नहीं पढ़ते लेकिन लोगों की लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं। नुकसान क्या हुआ कि लोगों के लिए अमल खत्म हुआ। अल्लाह ताला कहते हैं इस कुरान के जरिए तुम्हारी जिंदगी आसान हो गई। मसलन पीछे एक वाक्य हमने पढ़ा गाय का, समझ ही नहीं आ रही थी उनको बात क्या करें, फिर मकतूल जिंदा हुआ तो लोगों को पता चल गया कि ये शख्स है कातिल, तो इज़्तिराब दूर हो गया। कुरान के जरिए तो यहूद और नसारा को अल्लाह ने बहुत बड़ी गाइडलाइन दे दी। और तीसरी चीज, बुशरा लिल मोमिनीन, और ये बुशरा है मोमिनों के लिए, खुशखबरी है। ये कौन से मोमिन है? जो इस पर अमल करेगा, जो इसके ऊपर देखेगा। अब आप देखिए कि इस एक आयत के अंदर बात उन्होंने क्या की थी, जिब्राइल की दुश्मनी की, इतनी की थी ना। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अगली आयत साथ लेंगे तो मजमून पूरा होगा। मन काना अदुवल लिल्लाह, जो अल्लाह का दुश्मन है। ये बताइए क्या यहूद ने ये कहा था हम अल्लाह के दुश्मन है? नहीं कहा था ना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह का दुश्मन, वह मलाइकाती ही, उसके फरिश्तों का दुश्मन। मलाइका जमा दिख रही है। क्या जिब्राइल के अलावा किसी और को भी कहा था कि हम उसके भी दुश्मन है? नहीं कहा था। बात पे गौर कीजिए जरा, बड़ी बारीक बात आने लगी आगे। उन्होंने सिर्फ जिब्राइल की दुश्मनी की बात की, जिब्राइल एक फरिश्ता है ओनली। अल्लाह ताला कह रहे हैं जो अल्लाह का दुश्मन, फरिश्तों का, व रसूली ही। क्या यहूद ने कहा कि हम अल्लाह के रसूलों के दुश्मन है? नहीं। अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं कि जो अल्लाह को, फरिश्तों को, उसके रसूलों को, व जिब्रीला, हाँ जिब्राइल को उन्होंने कहा था, व मीकाला, मीकाईल को दुश्मन उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वही आप पर मीकाईल लेके आते तो हम मान जाते, क्योंकि वो बड़े खैर के फरिश्ते हैं, वो बारिश बरसाते हैं, वो खैर लाते हैं, फसलें आती हैं, ये होता है। फइन्नल्लाहा अदुव्वुल लिल काफिरीन, बस अल्लाह दुश्मन है काफिरों का। क्या बात समझ आई? कि जो अल्लाह के एक फरिश्ते से दुश्मनी रखेगा ना, अल्लाह खुद भी उसका दुश्मन और अल्लाह के सारी मखलूक उसकी दुश्मन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई किसी के बच्चे को तकलीफ दे, दुश्मनी करे, तो माँ कहती है कि आज से फिर मेरा भी तेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। इधर से बात पता चलती है कि ईमान वालों से, नेक लोगों से दुश्मनी रखना असल में अल्लाह, फरिश्तों, रसूलों, किताबों से दुश्मनी रखना है। इस्लाम का एक मिजाज समझ लें, कभी कुल कभी जुज। सिर्फ एक बंदे का इनकार करके बंदा असल में इस बात का सबूत दे रहा होता है कि उसके दिल में अल्लाह की कदर नहीं है। अल्लाह ताला ये बातें नहीं करते। हम कितने खुले मुंह के साथ दीनदारों पे बातें करते हैं। चले कोई दीनदार किसी दीनदार को कह दे ना कि ये भटका हुआ है या इसका अकीदा खराब है, तो बात भी समझ आती है। चलो भाई तुम भी इल्म वाले, वो भी इल्म वाला, खुद ही भुगत लो। हमारा कल्चर आज क्या बन गया? क्या आपको ये आयतें पढ़ के आज उम्मत मुस्लिमा का कल्चर नहीं दिख रहा? सबसे ज्यादा बातें मौलवियों को करते हैं, लतीफे जितने मौलवियों के नाम पे बनते हैं, मुहावरे, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुल्ला और हलवा, ये मुल्ला कौन होते हैं? क्या ये अल्लाह के प्यारे नहीं? हदीस का खुलासा आपको बताती हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने किसी एक अल्लाह के प्यारे के साथ दुश्मनी की, उसने अल्लाह को चैलेंज किया। आप और मैं कैसे किसी के बारे में इतनी बड़ी बात कह दें? क्या पता अल्लाह के पास उसका क्या मुकाम हो और अल्लाह ताला उसके बदले में फिर आपके और मेरे के ऊपर उसकी कोई पकड़ ले आए। नतीजा क्या होगा कि हम अपने आप को पीछे कर देंगे अल्लाह के लिए। इसलिए हमेशा इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम कभी किसी दीन वाले का मजाक ना उड़ाएं। मैं आप सबको नसीहत करूंगी, अगर आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं ना, माननी हक वालों की ये बात, जो हक बात करते हैं कुरान और सुन्नत की, और इज्जत हर एक की करें। क्या हम अपने खानदान के बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते? क्या हमारे खानदान के सब बुजुर्ग वलीउल्लाह? उनमें अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, लेकिन इस्लाम तो कहता है कि अपने बड़ों का एहतराम करो, इज्जत करो, तकरीम करो। तो जब हम अपने चच्चा की, खालू की, फुफा की, बाप के कुछ और रिश्तेदारों की, बाप की उम्र के आम मर्दों की इज्जत करते हैं, तो क्या दीनदार इतनी भी इज्जत के काबिल नहीं रहे? बात वाजे, आपके हो सकता है, मिसाल दे देती हूँ, आपके फुफा हो सकता है उनका कीदा खराब हो, मुमकिन है, शिर्क भी हो सकता है, बिदती भी हो सकते हैं, तो क्या जाके आप फुफा जी को गालियां देंगे? बदतमीजियां करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो क्या एक बंदा जो दीन के नाम पे मशहूर हो गया और वो गलत काम करता है तो आप उसका मजाक उड़ाएंगे? और आज कल्चर क्या, एक मसलक का ये मौलवी साहब दूसरे मसलक वाले को वल्लाही इतनी गंदी गालियां देते हैं कि जुबान पे लाओ तो जुबान गंदी हो जाती है। मिंबरों पे, खुतबों में, जलसों में, जुलूसों में, आपने ये कल्चर नहीं अपनाना। अल्लाह के बीच में बंदे के बीच में क्यों आए बंदा, अपनी काम कीजिए। दूसरी बात जो असल में खूबसूरत बात है, ये तो एक टेक्स्ट की बात थी ना, हाईलाइट कीजिए इस आयत के अंदर अला कल्बी का, ये साइड पॉइंट्स हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान कहाँ नाजिल करते थे? अल्लाह के नबी के दिल पर करते थे। नोट कर लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लम सर की आंखों से नहीं कुरान सुनते थे, दिल की आंखों से सुनते थे। क्यों? अमूमन देखिए कि सुनने का काम कान करते हैं ना, हमारे फाइव सेंसेस, सुनना, देखना, चखना, सूंघना, बोलना, ये गलती खा सकते हैं। मैं इस वक्त बोल रही हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आहिस्ता बोलूँ, आप लिखें, आवाज़ इतनी रखूँ कि कम से कम आप सब तक आवाज़ पहुँचे, मुमकिन है ना। इसके बावजूद हो सकता है कि आपके कान कुछ और सुने। तो हमारे ये जो फाइव सेंसेस होते हैं ना, ये गलती करते हैं, दिल गलती नहीं करता। आप सब जो इस हॉल में बैठे हैं, अगर तो आप अपने सर के कानों से सुन रहे हैं ना, तो दसियों दफा आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। मैं यकीन से कह सकती हूँ, हमारे इस हॉल में बैठे लोग टेलीफोन पे टेक्स्ट कर रहे होते हैं, मुझे यहाँ बैठ के दिखता है। आप मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, आप किसी का नीचे आने का भी इंतज़ार करते हैं। ये है आपका कानों से सुनना। कल आपसे कोई पूछेगा कल के सबक से क्या सीखा, आज भी मैं अगर आपसे कहूँ बाद में कि लिखिए क्या लिखा है, तो कौन लोग नहीं लिख सकते? किसको शेयरिंग मुश्किल लगती है जो दिल से नहीं सुन रहा होता? कुरान का महल दिल है, और हम इसको कहाँ परखना चाहते हैं? दिमाग पे। अमूमन हमारे जहनों में क्या है कि कुरान पढ़ना है तो दिमाग लगाओ, लफ्जी तर्जमा याद करना, बादाम खिलाते हैं अफजों को, करते हैं ना, दूध पिलाओ इनको, नहीं, कुरान दिमाग पे नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने इसको दिलों पे नाजिल किया और ये दिल पे ही रहेगा। वलो अनजल न हाजल कुरान अला जबलतु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, सूरह हशर के आखिरी रुकू की आयत है कि अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पे नाजिल करते तो तुम देखते कि वो लरसने लगता और कांपने लगता अल्लाह की खशियत से, लेकिन ए नबी आपके दिल पे इसको नाजिल किया। अल्लाह ताला क्या करे, अला कल्बी का। तो जब तक दिल पे कुरान नाप नहीं लेंगे, मार्फत के राज नहीं खुलेंगे। मार्फत का खजाना है दिल, और जब ये कुरान आपके दिल पे आ जाएगा तो इसका ही तो नाम है फोकस होना। आप देखिए कि हमने ये चीज़ देखी है, जब दिल किसी चीज़ पे आ जाए फिर बंदा वो काम करके ही रहता है। और दिल ना है, दिमाग है, 100 फायदे अक्ल बताए ना किसी काम के, हम फिर भी नहीं करते। उसको बुला लें, उससे करा लें, छोड़ो बाद में कर लें, नींद आ रही है, फिल्म देख लें, अकल है ना, अकल कह रही है कि मेहमान आ रहे हैं, मियाँ साहब अपने 10 दोस्तों को बुलाया, भाई शाम को उठो काम कर लो, कर लो। अकल कहती है कर लो कर लो कर लो, दिल ही नहीं आ रहा। और आने वाले लोग अगर हमारे पसंदीदा ही ना हो, ससुराल से कोई आ जाए, बहुत जल्द दिल से उठेंगे ना। लेकिन अगर कोई ऐसा मेहमान आ जाए कि जिसमें दिल पड़ा हुआ है, माँ, बहन, भाई, कोई अच्छी दोस्त, फिर देखे ना, मुमकिनात मुमकिन बन जाती हैं। आपने 20 बार आजमाया होगा, कहते हैं ना दिमाग में घुस गया कि ये करना है, आप यहाँ से उठेंगे घर जाने से पहले 10 दुकानों पे फिर के वो चीज़ लेके के मिले ना मिले, आप देख जरोगे उधर ना मिल जाए, उधर ना होगी, उधर ना होगी, दिल पड़ा हुआ है ना। दुआ करें कि हमारा दिल इस कुरान में पड़ जाए, जितना ज्यादा पड़ेगा उतना ज्यादा फायदा होगा। कहते ना कि दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा। हमारे दिल आज मुर्दा है क्योंकि दिलों की जिंदगी कुरान से है। पिछले सबक में ईमान की बात थी ना, यहाँ दिल की बात है। और ईमान जुबान की नोक पर नहीं आता, पहले दिल की गहराइयों में आता है। अगर आपसे कोई ईमान की तारीफ पूछे, ईमान क्या होता है, तो 3 दर्जे हैं, तस्दीकुम बिलकल, इकरारुम बिल लिसान, व अमलुम बिल जवारेह। उर्दू में इंग्लिश में लिख ले, दिल से तस्दीक करना, वेरीफाई करना, पहले दिल मुसलमान होता है, फिर जुबान से आप कहते हैं अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, किसी मस्जिद में किसी इमाम साहब के सामने किसी ने कोशिश की, आपने बोल दिया, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी अमल बिल जवारे यानी अपने फाइव लिम्स के साथ अमल करना, जिस्म जुबान आंखें कान अल्लाह के रास्ते में लगा देना, यही चीज़ है। तो मैं और आप ये दुआ करें कि अल्लाह तू हमारा दिल लगा दे इस कुरान में, अल्लाह मेरा दिल चाहने लगे इस वही को अखज़ करने के लिए। कभी अपने लोगों को मूवीज देखते देखे देखा होगा, मूवी देखी हो ना देखी हो, लोगों को देखा होगा कि जब वो मूवीज देखते हैं होश ही नहीं रहती, वजह क्या है? अला कल्बी का दिल पड़ गया ना गाने में, गाने लगे हो। मैच देखते हुए कभी देखा है लोगों को? मैं एक ऐसी सिस्टर को जानती हूँ कि जिनके बारे में मारूफ है कि जिन दिनों में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस लगते थे तो उसे एक हफ्ता पहले खाने बना के रख लेती हैं, और उन दिनों में ना कोई उनके घर आ सकता है ना जा सकता है, मियाँ बच्चे सब खाना अपना खुद उठाएं गर्म करें क्योंकि वो मैच देख रही हैं। दिल आ गया ना। कभी आपने लोगों को शॉपिंग करते देखा है? वॉक हमें कितनी मुश्किल लगती है लेकिन शॉपिंग का शौक हो तो कभी पता चलता है 8 सीढ़ियां चढ़ के 8वें फ्लोर पे आ गए, दिल है ना। कभी आप यहाँ से सिर्फ 1 वीक के लिए पाकिस्तान जाए, कहेंगे तो आप ये कि माँ बहन को मिलने गए और उन 8 दिनों में शायद ही जो सुबह के वक्त हैं दुकान खुलने से बंद तक आप बाजारों में घूमते हैं, और खुदा ना खास्ता अब अगर आप गए भी किसी बच्ची की शादी की तैयारी के लिए हो तो फिर तो मैंने लोगों को दुकानें खुलवा खुलवा के ज्वेलर्स और टेलर्स के दुकानों पर जाता देखा है कि नहीं जी मैं बाहर से आई हूँ, वो भी खुश होते हैं। ये तो कभी कभी बंदा हाथ लगना जो रुपयों की बजाय पाउंड्स लेके आया हुआ है। दिल आप अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से पूछें, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि आगे जाऊँ, खुद से पूछें। आज अल्हम्दुलिल्लाह 98 और 7 कितनी हो गई, 105 आयतें पढ़ रहे हैं, क्या मेरा दिल पड़ गया इसमें कि नहीं? कुछ लोग सिर्फ ऊपर से सुनते हैं, आप जितने भी ये यहूद के किस्से सुन सुना रहे हैं ना, आपको पता है कि यहूद का हाल क्या था? तौरात उनके दिल में नहीं आई थी, ऊपर ऊपर रही थी। आप ऐसे समझे कि जैसे ऊपर ऊपर कोई चीज होती है ना, एक रीण बन जाता है, देखने में लगता है बहुत अच्छी है, यूं करेंगे ना तो कटक से वो छिलकों के छिलके पेंट उतर जाएगा, और जो पेंट मसाले में घोल के लगा दें दीवार तोड़ेंगे तो वो मसाला साथ टूटेगा। कुछ लोगों का ईमान ऐसा होता है कि ऊपर बाहर ईमान का खरींड आ जाता है बस, लेकिन अंदर दीमक लगी होती है। इसकी अलामत क्या है? जब उस बंदे से जिससे उसको थोड़ी बहुत हिदायत मिलती है या जिसके जरिए से अल्लाह से कुर्ब मिलता है उसके पास रहते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं, जरा वो इधर उधर हुआ इनका वो ऊपर का खरींड उतरता, अंदर से खोखलापन। लकड़ी को ही सोच लेना, बस दफा अंदर से लकड़ी खोखली हुई होती है। आप यहाँ 4 घंटे बैठते हैं, आप इस 4 घंटे से निकलने को आज़ादी समझेंगे, ब्रेक के लिए बार बार घड़ी देखेंगे अगर आपके दिल पे नहीं उतर रही है। कुछ यहाँ से निकल के जान छुड़ाते हैं, अब कल फिर आएंगे देखते हैं क्या होता है। आप किस क्लास में बैठ के जमाइयाँ मुझे बताती हैं कि कल आप रात को नहीं सोए, और आपके चेहरे का इत्मीनान और सुकून और खुशी बताती है कि आप इस सोच से रात को जल्दी सो गए थे कि मैंने सुबह फ्रेश उठना है। यकीन करें, दुआ करें ये दिल पे आ जाए। आज उम्मते मुस्लिमा के दिल क्यों फीके पड़े हुए हैं? क्योंकि हाँ, इस दिल में कुछ और रखा हुआ है, ये भी समझ लें। क्यों नहीं उतरता दिल पे मेरे? खुद से पूछें, मैं इतनी बदकिस्मत हूँ, कहाँ अल्लाह ने मुझे ला बिठाया? आप बताइए जरा, पिछले साल इन दिनों में आप क्या कर रहे थे? स्कूल का होगा, कुछ तो कर रहे थे, ये कोई नहीं हो सकता कि कुछ ना करें, लेकिन कुछ तो कर ही रहे थे ना। कुछ नहीं करते तो इस वक्त आप उठ के चाय का कप तो बना ही रहे होते थे ना 12 बजे के करीब, अब तो उठना ही है, 11:50 हो गए हैं, उठना ही था ना। कोई स्कूल में जाती थी बच्चियां तो स्कूलों में होंगी, कोई जॉब पे जाती थी जॉब पे होंगी ना, कुछ तो कर रहे थे। अपने आप को चुटकी काटें कि मैं इस वक्त कुरान में क्यों बैठ गई, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। और अगर आपको कह दिया जाए कि नहीं आप छुट्टी करें, सॉरी आप नहीं पढ़ सकते, तो लगता है कि बंदे की मौत है, मर जाए बंदा इस बात से कि अल्लाह के दीन की किसी जगह पे बैठने के बाद उसका नाम वहां से कट जाए। तो दुआ करें, तड़पे, रोए, चीखें, जो करना है कर लें। और ये जो हम पे मजबूरियां आती हैं ना और इल्जाम और घर की तरफ से, ये हमारा अल्लाह से मामला होता है, अल्लाह हमारे ऊपर इंतकाम लेता है। तू वहां बैठ के भी खुश नहीं थी, तू वहां बैठ के भी दुनिया की बातें सोचती थी, चलो मैं किसी को भेजता हूँ जो तुम्हें कह दे खबरदार कल से तुम गई टांगे तोड़ दूंगा। कोई नहीं कहता आजकल, लेकिन लगता हमें ऐसे ही है। किसी का आराम से भी कहना हमें ऐसे लगता है कि वो मुझे यहाँ नहीं जाने देंगे। तो ये आपका और आपके रब का मामला है, मैं आपको कभी नहीं रोक सकती। कोई ग्रुप लीडर, साथी, कॉल करने वाले आपके दोस्त नहीं बुला सकते आपको जब तक आपका दिल ना पड़े। और ये दिल कैसे बदलता है? अल्लाह ना करे कि आज आपका दूसरा दिन हो क्लास में से छुट्टी का, आज तो आप मौजूद है ना। कभी कोई रिकॉर्डिंग सुन के देख ले, आप पिछले अपने देख लीजिए, जब आप रोज आते हैं ना तो आपका अगले दिन घर रहना मुश्किल हो जाता है, और जब आप एक दिन छुट्टी करते हैं तो अगले दिन आना मुश्किल होता है। क्या आप लोगों ने इन 3 वीक्स में फील किया कि मंडे को आना मुश्किल लगता है? तो इसलिए मैं और आप इस आयत पे गौर करते हुए हमने इस किताब को अपने दिल की बहार बनाना है। मांगे, और जब तक दिल गंदी चीजों से खाली नहीं होगा, खराब चीजें नहीं निकलेंगी जिंदगी से, ये नहीं आएगा। इसको आप यूं समझें, मिसाल लें अपने जहन में बिल्कुल, कि एक जगह फूलों की क्यारी है, खाली जमीन है, बस उसके अंदर हल्का हल्का बीज डला हुआ है, उस पर भी बारिश पड़ती है, और एक कचरे का ढेर है उस पर भी बारिश पड़ती है। फर्क क्या है? बारिश के बाद ये जो क्यारी है ना, इसमें से खुशबू निकलेगी और कचरे के ढेर से बदबू उठेगी। यही दिल है, कुछ के दिल साफ हैं, खूबसूरत हैं, नेकियों की हिरस है। मैं नहीं कहती कि आप और सब मैं नेक हैं, नेक होते तो फिर आते क्यों इधर, फिर अल्लाह में क्यों बिठाता? सेहतमंद बंदा तो डॉक्टर की दुकान पे नहीं जाता। हैं हम सबके दिल गंदे, लेकिन तलब लग गई है कि हुदा लिल मुत्तकीन। इस तलब के साथ अगर बैठेंगे ना इधर कि मैंने अपने आप को चेंज करना है, तो इंशाल्लाह आपके दिल पे उतरेगा। और बीमारी के भी दर्जे होते हैं, कोई गंदे दिल ज्यादा होते हैं, कोई कम दिल होते हैं। गंदे बर्तन है, ऐसे पानी से भी खंगाल दे साफ हो जाते हैं कई बर्तन, और कुछ को फिर रगड़ना पड़ता है। खुद चेक करें, आज इस वीकेंड पे आप चेक करें मेरे दिल में कितनी कुकालक लगी हुई है, कितना गंदा दिल। एक एक एंगल से इसको देखें, और ये तीन सिफात, मुसद्दिक लिमा बैना यदई, हुदन, बुशरा, ये तीन सिफात है ना कुरान की, इसको अपने ऊपर लें। क्या वाकई ये कुरान मेरे जहन के अंदर उलझे हुए सवालात का जवाब दे रहा है? तो ये मुसद्दिक है। शरह सदर हो रहा है ना दिन ब दिन। जितनी हिस्ट्री आपने इन 3 वीक में पढ़ ली है यहूद की, मुझे यकीन है आपने पिछली सारी जिंदगी नहीं पढ़ी होगी, तो जहन के अंदर कई डाउट्स जो होते हैं उसका हल निकल गया ना। खुदन गाइडलाइन मिल रही है जिंदगी गुजारने का एक तरीका, और दिल खुश, बुशरा। कुरान बुशरा बनता ही उसके लिए है जो दिल से इसको पढ़ता है। ये ईमान की रामत है। और अगर आप कुरान की महफिल में बेरगबत इधर देख उधर देख, तो मान लीजिए ईमान की कमजोरी है। और ईमान पुराना होता है, हदीस में आता है ईमान कपड़ों की तरह पुराना हो जाता है, चिथड़े बन जाता है बाज़ लोगों का ईमान। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को ताज़ा रखे, नया रखे।